اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولاہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں امام عزادارانِ امام گلستان ہند بومبے ممبئی کی یہ نائنتھ مجلس ہے, نویں مجلس ہے اور کل کی آخری مجلس انشاءاللہ. قرآن مجید کا یہ اعلان, اللہ کا یہ اناؤنسمنٹ کہ اللہ کے نزدیک اس کا فیوریٹ ریلیجن, اس کا پسندیدہ مذہب صرف اسلام ہے. اسی اسلام کی جو ہولی پلیسز ہیں اس پہ مسلسل مجلسیں ہو رہی. یہ میری 19th مجلس ہے ہولی پلیسز کے پر. اگر رضوی کالج سے آپ سٹارٹ کریں تو یہاں تک 19 مجلسیں ہو گئی ہیں اور کل کی آخری مجلس. بٹ اسٹل آئی کین سے کہ وہ ڈیٹیلس میں بیان نہیں کر سکا, اسٹل دو عشرے اور ہو سکتے یہی ٹاپک کے اوپر, مکے پہ, مدینے میں, نجف اشرف, کربلا. کربلا مولا کو تو میں نے ٹچ ہی نہیں کیا, کاظمین, سامرہ, نجف اشرف, مشہد مقدس, خم کو بھی ٹچ نہیں کر سکا, مشہد مقدس کو بھی ٹچ نہیں کر سکا. اسٹل ابھی دو عشرے اس پہ اور ہو سکتے, جبکہ مسلسل میں پہلی محرم سے اسی مقامات کو جو ہماری ہولی پلیسز ہیں, اس لیے کہ ہولی پلیسز پہ تو سبھی جاتے ہیں, اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب کرے. اس سے اچھی جگہ نہیں ہے, بہترین جگہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی, اپنی لائف کو بدلنے کی, اپنی ڈیسٹینی بدلنے, تقدیر کا بدلنا, زندگی کا بدلنا, لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد وہ ایٹرنل لائف کے لیے ان جگہوں پہ جانا اور جا کر کوئی چیز کو حاصل کرنا. لیکن میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ پریکٹس کی زیارت نہیں ہوتی, روٹین کی زیارت نہیں کرنا, یہ سوچ کے نہیں جانا چلو ہالیڈے ہے جائیں گے زیارت کریں گے آ جائیں گے, یہ ایسی زیارت نہیں ہوتی. اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے, جس معصوم کی زیارت کو جا رہے, جب آپ واپس آ رہے تو اللہ سارے تمہارے گناہوں کا, وہ تو اتنا مرسیفل ہے, وہ تو یہ کہہ رہا کہ تم میرے پاس آؤ میں سارے گناہ ان کے صدقے میں معاف کر دوں گا. لیکن ہم جا رہے جیسے جا رہے ویسے واپس آ رہے. لیکن اب اتنے دنوں سے ان مجالس کو آپ نے سنی, پوری دنیا سن رہی اس وقت الحمدللہ, تو لیکن چینج آنا, زیارت میں چینج آنا. اب جب جانا انشاءاللہ اربعین میں آپ جا رہے. اربعین کی زیارت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اربعین کی زیارت ایک روٹین کی زیارت نہیں ہے, ہر سال ماشاءاللہ ملینز کی تعداد میں جا رہے. میں یہ نہیں بولتا, لوگوں کی تقدیر بدل رہی وہاں پہ, لوگ چینج ہو رہے, لیکن اربعین کی ایک زیارت کربلا کی صرف 11th امام بولتے ہیں وہ علامت مومن ہے, مومن کی علامت ہے. مومن کی جو علامات بتائی گئی 21 علامتیں ہیں, کوالٹیز آف مومن, کہ یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا. اس میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روزہ اربعین ہو. تو اتنی بڑی زیارت ہے, پھر وہ لٹرلی واک ٹو پیراڈائز ہے, وہ واک ہے, لٹرلی واک ہے. جو آپ نجف اشرف سے کربلا کو جو واک کر رہے ہیں نا, مطلب آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے, دیکھ ہی نہیں سکتے, ایسے پردے پڑے ہوئے ہمارے اوپر. اگر پردے ہٹے تو آپ کو احساس ہو گیا ایک ایک قدم جو تم اٹھا رہے نجف اشرف سے کربلا کے لیے, آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ تو چل رہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ملائکہ ہوں گے, اولیاء ہوں گے جو آپ کے ساتھ 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 چل, اجنہ ہوں گے جو آپ کے ساتھ چل رہے. تو اب مثال کے طور پہ 3 دن کی واک ہے کربلا مولا کی, 3 دن آپ واک کر رہے ہیں, کنٹینیوس واک کر رہے ہیں. تو وہ واک میں کر رہے کیا, جسٹ واک کر رہے یا ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں, یا جسٹ واک کر رہے یا لوگوں سے گوسپ کر رہے, یا واک کر رہے یا اپنے ایشوز کو لوگوں تک پہنچا رہے, یا واک کر رہے یا بیک بائٹنگ کر رہے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, ریئلی سیڈ ٹو سے آل دس, اور مجھے افسوس کیا ہے معلوم, کہ میں اپنے لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں, مومنین سے بات کر رہا ہوں. मैं गैरों से बात नहीं कर रहा, अगर गैर करे ना ऐसी वॉक तो समझ में भी आती बात कि उनको क्या इंपॉर्टेंस है करबला की या उनको क्या इंपॉर्टेंस है नजफ अशरफ की। आपको अंदाजा नहीं है अरबईन की वॉक क्या है। अरबईन का तुम एक एक कदम उठा रहे ना तुम्हारी जिंदगी बढ़ती जाएगी। तुम्हारी दिल में अगर कोई हाजात है, अनलिमिटेड हाजात, अनलिमिटेड दुआएं हैं तुम्हारे, वो सारी कबूल होना ही होना है। इसलिए कि तुम ऐसी जगह पे जा रहे कि जो पार्ट ऑफ जन्ना है, नजफ अशरफ से करबला क्या है, ये पार्ट ऑफ जन्ना है। तुम जन्नत के अंदर हो और तुम्हारे एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो तुम्हारा गुजर रहा ना, मासूमीन की निगाह तुम्हारे ऊपर है। अगर मैं ऐसी कैजुअल वॉक कर रहा, सब कर रहे वॉक, मैं भी कर रहा वॉक, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि जो ये वॉक कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह तुमको हर साल नसीब करे, हर साल तुमको जाना नसीब करे, लेकिन ज्यारत पे जाने से पहले का भी प्रिपरेशन है। मतलब आपने इरादा किया ज्यारत का, थोड़ी देर ज्यारत के बारे में सुन लीजिए, मेरी टॉपिक ही यही है ना, ज्यारत के लिए तुमने जस्ट इरादा किया, नीयत की कि मैं करबला मौला जाऊंगा, मैं सामेरा जाऊंगा, मैं काजमैन जाऊंगा, मैं नजफ अशरफ मशहद मुकदस या मदीने मुनवरा जाऊंगा, नीयत की, तुम्हारा अकाउंट ओपन हो गया। नीयत के ऊपर इस्लाम वो मजहब का नाम है कि जो नीयत पे अजर देता, कोई और मजहब नहीं देता, दूसरे मजहब तो कुछ देते ही नहीं, जीरो है उनके पास, लेकिन इस्लाम और हमारी फिक्र मासूमीन कर कि अगर तुमने जो नीयत करो, तुम खाली यहां से नीयत करें कि मैं करबला, आपके पास एक पैसा नहीं है, सिर्फ आपकी नीयत है कि मौला मुझे आप ज़ियारत पे बुलाओ, मेरी नीयत है क्या, इफ यू गिव मी आई कम टू यू, आपने सिर्फ नीयत की, नीयत का अजर मिल गया आपको, आपके अकाउंट में। दोस्तों बाज़ वक्त ऐसा होगा ना, एक एक नेकी के लिए, एक मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार जो मैं बात कर रहा आपसे, एक एक नेकी के लिए लोग मरेंगे, हमको प्रॉब्लम होगा एक डे ऑफ जजमेंट में, जब उस स्केल के अंदर हमारे अमाल रखे जाएंगे, तो बाज़ वक्त एक एक नेकी, काश ये नेकी मिल जाए, काश ये नेकी मिल जाए, तो मेरा जो स्केल है मैं उसको में बैलेंस आ जाऊं। एक एक नेकी के लिए लोग मरेंगे, एक एक नेकी के लिए तलाश करेंगे, काश वो नेकी आ जाए। तो ज्यारत का आपको इतनी अच्छी हमको अपॉर्चुनिटी है, हमको मौला ने हमारे ऊपर एक अजीम करम किया, तुम नियत कर रहे तुम्हारा अकाउंट ओपन हो गया। अब लेकिन उसके बाद जैसे तुम तामीर करते, बिल्डिंग की तामीर कर रहे, बनाते हम और तोड़ते हम, फिर आपने कोई दूसरे हरकतें करना शुरू की, आपकी जो नियत खराब हो रही, अब खत्म हो रहा। मिस आप ज्यारत पे जा रहे, रास्ते भर एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट आए तक एक की अगर भी आपने बात कर ली किसी मोमिन के भी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ये बैक बाइटिंग जो है तुम्हारी सारी ज्यारत को, सारी वॉक को, सारे आमाल को खत्म कर देगी। किसी की बात नहीं करना, किसी के बारे में आप ये मत बोलो यार ये तो होता ही, और हमारी प्रैक्टिस है, मैं तो अपनी आंखों से और कानों से सुनता हूं, देखता हूं, पूरी दुनिया में लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि कितना बड़ा एक अल्लाह दे रहा, मन मुझे नहीं चाहिए, हम अपने ज्यारत को खराब कर रहे हैं। वरना ये ज्यारत के बाद तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। कोई आदमी खाली आ ही नहीं सकता करबला से, आ ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज, आ ही नहीं सकता, नजफ अशरफ से कोई खाली आ ही नहीं सकता। अगर तुम्हारी नियत साफ है तो तुमको मिलना ही मिलना है। आप सोचो किसकी बारगाह में जा रहे, किसकी, हुसैन इब्न अली कौन है, किसकी बारगाह में जा रहे, जिसकी तकदीर में नहीं था, समझ में आई बात, उसने क्या कहा था और कहने वाला कौन था, अल्लाह का रसूल, कि जिसको दुश्मन ने सादिक कहा, उस रसूल ने कहा तेरी तकदीर में, तेरी डेस्टिनी में नहीं है, लोहे महफूज पे तेरी तकदीर जो लिखी है उसमें तेरे को एक बेटा नहीं है। अल्लाह का रसूल कह दे तो पत्थर की लकीर है, अगर है भी तो नहीं मिलेगा उसको, है भी तो, इसलिए रसूल ने कह दिया नहीं तो नहीं। इसलिए आप ये गौर से सुनो, मैं बहुत बड़ा जुमला बोल रहा, अगर रसूल ने कह दिया नहीं है तो नहीं। क्यों, बीबी जहरा ने क्या किया था, जब बच्चों ने कहा था कि अम्मा कल ईद का दिन है, इमाम हसन इमाम हुसैन का मशहूर वाकया कि कल ईद का दिन है, मदीने के सारे बच्चों के पास न्यू ड्रेसेस है, हमारे कहा है, बीवी ने क्या कहा, टेलर के पास है, कहा खयाब के पास थे टेलर के पास। ये लोग वो है कि जिनके लिए अल्लाह सूरह दहर में कहता है कि ये इनकी मर्जी हमारी, हमारी मर्जी, छठे इमाम का जुमला के नहनो मशियत अल्लाह, हम अल्लाह की मर्जी है। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, सूरह दहर की आयत। वमा तशाउना, जो तुम चाहते वो हम चाहते, जो हम चाहते वो तुम चाहते। नहीं था टेलर के पास, लेकिन सिद्दीका इसको बोलते कि जो बोलते जाते वो चीज बनती जाती। समझ में आई बात? तो बीबी ने कहा था कि नहीं, तो आए टेलर ही बोला आके, रिजवान ने आके ये नहीं बोला कि मैं रिजवान हूं, जन्नत का मैं दारोगा हूं, जन्नत का केयर टेकर हूं, जन्नत के दरवाजे पर ठहरता हूं। उसने कहा इस वक्त बेहतरीन मेरा स्टेटस बढ़ गया, मेरा स्टेटस बढ़ा, मैं जन्नत का दारोगा या जन्नत का रिजवान बनूंगा तो मेरा स्टेटस नहीं है, हसनैन का खयात बनूंगा तो स्टेटस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो अब सोचो कि कितनी ये लोग तकदीरों को बदलने वाले। अल्लाह का रसूल बोल रहा तेरे को बच्चे नहीं है। हुसैन ने क्या कहा? मैं दे रहा हूं। एक दो तीन, जिब्राइल आ गए, कहा मेरे हबीब अल्लाह कह रहा जब तक बोलते रहेंगे देता रहूंगा। समझ में आ गई? ये है हुसैन, ऐसे मौला के पास। अच्छा वो जो आया था ना, वो तो यहूदी था, वो तो इमाम का चाहने वाला तो नहीं था। आप तो आजादार हुसैन है, आप तो करबला वालों के साथ हैं, आप तो बीबी की दुआ से पैदा हुए। ये जियारत, अब की जियारत जो हो ना, मेरी रिक्वेस्ट है कोई बात करा तो उसके मुंह पे बोलो, वॉक करते हुए, करबला जाते हुए, नजफ सब जाते हुए, क्या डोंट, किसी की बात मत करो, एक ही तुम्हारी जबान पे रहना, या हुसैन रहना या अली रहना, या सलवात रहना या अस्तगफार रहना। मुझसे कहा मौलाना अगर कुछ बात नहीं करेंगे तो फिर चलेंगे कैसा? माशाल्लाह, जब तक किसी की बात नहीं करेंगे टाइम पास कैसे होगा? तो तुम इसलिए जा रहे हो वक्त, इसलिए जा रहे? अफसोस, अफसोस से बोल रहा यार, प्लीज समझो मैं क्या बोल रहा। दिल दुखता है ना, इसलिए बोलता हूं। कोई बात करे, कोई बात करे, किसी की बात करे, वहां जाओ तो तुम बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, दुनिया से, दुनिया छोड़ दो, छोड़ दो, टेलीफोन को पूरे पुट ऑफ करके जाओ। जब जरूरत है खोलो, बात करना जिसे बात करो, अदरवाइज क्लोज इट, पुट ऑफ। क्यों? कि ना वो टेलीफोन आए इंडिया से, ना किसी की न्यूज हमको आए, हमको टोटल 100% कंसंट्रेशन करबला पे करना है, उस वॉक के ऊपर करना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज ऑल द बेनिफिट्स व्हिच इमाम हुसैन इज गोइंग टू गिव यू। कंप्लीट लूज कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चेहरों को सही करके आओ, आंखों को सही करके आओ, कानों को सही करके आओ, जब जाओ ज्यारत के लिए तो ये बोल के जाओ कि मौला मैं ये गिफ्ट लाया हूं। पैसे इमाम हुसैन नहीं मांग रहे, कोई इमाम तुमसे पैसा नहीं मांग रहा, उनको हर मासूम को तुमको जाके तोहफा देना है। अब मैं सिंपल तोहफे जैसा नजफ अशरफ है, करबला काज़िम है, तक बात गई, आज मैं सामेरे में आऊंगा। जब जाना इमाम को ज्यारत, जब इसने दुखल पढ़ना, इसने दुखल पढ़ने के बाद जब मौला जिस इमाम के पास तुम जा रहे उनको सलाम करना, दूर से रोजा देख रहा। मिसाल के तौर पे तुम काजमैन को तुमने दूर से देखा, इसलिए कि काजमैन दूर से नजर आता, जैसे ही आप बस से उतरते और वहां से निकलते, काफी दूर पहले बस रोकती है, वहां से आपको दोनों मासूमीन के गोल्डन टोम्स नजर आते, तो फौरन देखकर पहली निगाह पड़ी दूर से, तुम अभी जरी नजर नहीं आई, अभी सिर्फ रोजा नजर आया, दूर से देख के बोलना पहली चीज सलाम करना, अस्सलाम अलैका या मुसब नजाफ, अस्सलाम अलैका या मोहम्मद इब्ने अली, सलाम करो। उसके बाद वहां से वो जो वॉक है, ऑलमोस्ट 10 to 12 minutes की वॉक होगी, वो पूरा जो स्ट्रच है वो आपको क्रॉस करना है, वहां तक जाना है। उस स्ट्रच पे जब तुम जाना, रास्ते भर बातें करते हो, जब फ्लाइट में ऐसा हुआ, बस में ऐसा हुआ, इसने ये किया, खाने में नमक कम था, ये भी एक प्रॉब्लम है। खा रहे जिसके पास जाके खा रहे ना, उन्हें इतनी मेहनत करके तुमको न्याज खिला रहा, बाहर निकल के बोल रहे चावल सही नहीं थे, खाने में नमक। बाबा ये नाशुक्री है, तुम्हारी इबादतें खत्म होंगी, ज्यारत खत्म होंगी। व्हाट आई एम सेइंग, ये बातें कोई नहीं बोलेगा आपको। मैं चाहता कि जितने बॉम्बे से जाए या पूरी दुनिया इस वक्त मुझे सुन रही ज़ैनबिया चैनल पे ना, सबको बोल रहा जो जो जा रहा हर तरफ से, कि अपनी ज्यारत को ज़ाया मत करो, ज्यारत को, इसलिए कि दोस्तों जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज़ है, सबसे ज्यादा मासूमीन जिस चीज से हेट करते, मैंने बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल किया, एंड इट्स ए फैक्ट कि मासूमीन जिस चीज से सबसे ज्यादा हेट करते ना, वो है बैकबाइटिंग। मैं बैकबाइटिंग मेरी तकरीर नहीं है, मेरी तकरीर यह है कि तुम किसी के बारे में ज्यारत में मत बात करो। कम से कम अगर तुमको 14 दिन 15 दिन ज्यारत में रह के अगर ये बीमारी छूट गई तो तुम बॉम्बे आके भी सही हो जाओगे। 14 दिन की प्रैक्टिस हो गई कि मुझे कोई बात करा बोलो आई डोंट वांट टू टॉक आई डोंट। जब बात करो मासूम की बात करो, जब बात करो ज्यारत की बात करो, जब बात करो इमाम की बात करो, जब बात करो लोगों की बात करो, उस मोजिजे को देखो कि हुसैन का कितना बड़ा मोजिजा है। वो रास्ता कितना नैरो रास्ता, वो रोड्स अब तो बड़ी नजर आ रही लेकिन जो वॉक कर रहे वो लोग कितनी नैरो, क्या इतने लोगों को वो एकोमोडेट कर सकती वो रोड? नहीं कर सकती। एक फ्लो है, समंदर है, सरों का समंदर चलते रहता है, हर आदमी चल रहा। आप प्रॉब्लम क्या हो रहा मालूम? इसमें खुदा ना खास्ता मैंने किसी की बात की, उसने सुनी, उसने सुनी, उसने सुनी, तो ये सारों के गुनाह तुम्हारे ऊपर आ गए, सारों के। तुम अपना गुनाह नहीं कर, अपनी ज्यारत खराब नहीं कर रहे, सारों की ज्यारत खराब कर रहे, और सारों का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अजाब ये तो शुक्र अदा करो कि हुसैन इब्न अली करीम इब्न करीम है, मौला करीम इब्न करीम है, कि मौला ने तुम्हारी कोई बात कोई प्रॉब्लम समझा ही नहीं, छोड़ दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। लेकिन रोते हैं मौला कि ये मेरे जायरीन है। हमेशा याद रखो एक चीज, मैं बहुत चौथे इमाम की जिंदगी का एक अजीब वाक्य, जब इमाम से उस शख्स ने आके कहा था देखो मैं ज्यारत वैसे नहीं होना हमारी जैसे इमाम ने चौथे इमाम ने बताया था उसका, जब उस शख्स ने आके अब्दुल्ला ने आके इमाम से मक्के में कहा था कि मौला कितने हाजी है, हजारों की तादाद में आज हाजी है, मौला कितना अच्छा लग रहा है इतने हाजी, तो इमाम ने क्या किया? उसके सर चेहरे पर हाथ फेरा, कहा देख एक हाजी नजर नहीं आया, चंद हाजी, फ्यू पीपल, सारे जानवर नजर आ रहे थे जो तवाफ कर रहे थे, मशहूर वाकया, सारे जानवर नजर आ रहे। तो हमको वो बनना नहीं है, हजारों लाखों रुपया तुम खर्च कर रहे फैमिलीज को लेके जाके, पैसा तो छोड़ो, मैं चाहता कि ज्यारत तुम्हारी एक ज्यारत, आज तुमको अंदाजा नहीं है, आप इस बिलरामी की बात को गौर से सुनो, आज तुमको अंदाजा नहीं है, आज तुम रियलाइज नहीं कर रहे, जब मरोगे तो ये ज्यारत तुम्हारे लिए इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगी, इतना तुम ये प्लैटिनम का कार्ड है दोस्तों कि दुनिया के हर जगह तुम इस्तेमाल कर सकते। ज्यारत हुसैन इब्ने अली अरबईन की जो है या कोई ज्यारत मौला हुसैन की, कहां कहां ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते। अगर रियल ज्यारत तुम्हारी हो गई, मौलकुल मौत के फरिश्ता आने से लेकर खबर के अंदर पहली रात, बरज़ख, महशर, पूरा सिरात और जन्नत के दरवाजे तक, ये वो कार्ड है तुम्हारे पास। लेकिन अफसोस अफसोस, वेरी वेरी सैड टू से, सब आदमी ये रिलैक्स है कि मेरी ज्यारत तो कबूल हुई। व्हाट इज द गारंटी कि तुम्हारी ज्यारत कबूल हुई? मासूम से क्या पूछा कि ये कैसे मालूम होना कि मेरी नमाज कबूल हुई? ये आबिद बिलग्रामी के जुमले हैं, ये तो इमाम के जुमले हैं जो मैं दोहरा रहा। छठे इमाम ने क्या कहा कि जब उसने पूछा कि मौला कैसे कन्फर्म हो, पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ा, कि मेरा एक सजदा भी कबूल हुआ, तो कहा बहुत आसान है, तुम ये चेक करो कि जब तुम इतनी नमाजें पढ़ रहे तो कितने गुना से तुम बच रहे और कितनी नेकी कर रहे। तुम खुद डिसाइड कर लो ज्यारत मेरी एक्सेप्ट हो रही या नहीं हो रही। मैं गुना से बचा, मिसाल के तौर पे मैं आके फिर शेव कर रहा, मैं आके फिर दाढ़ी को कम कर रहा, मैं आके, मुझे अफसोस ये कि मैं इतनी दफा पर्दे के लिए हिजाब के लिए बोलता हूं, आज लड़कियों को हिजाब के लिए नहीं बोल रहा कि लड़की हिजाब करे, लड़के भी तो करे, यूथ भी तो करे, क्या आपके ऊपर हिजाब नहीं है? खामोश हो गए नहीं सब। मैं यूथ का बोल रहा, लड़कों का बोल रहा, इट इज योर ड्यूटी। सिर्फ लड़की को हिजाब करना नहीं है इस्लाम में, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कैसे बैठ के गुफ्तगू कर रहे बगैर बेहिजाब की लड़की से? तुम कैसे कर रहे? हाउ कैन यू डू इट? लड़कों को भी चाहिए। क्या आप मिसाल के तौर पर वॉक कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर चैटिंग? मैं नहीं बोलता, बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, बंद अल्फाज में बोल रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। रास्ते भर तुम चैटिंग कर रहे हो या रास्ते भर तुम अपने ग्रुप में जो जा रहे, किसी के साथ बात करना, किसी के साथ कुछ गलत हुक्म क्या है, लड़की के साथ क्या बात करो, जो मसला है उतना पूछो, खत्म करो, ड्रैग मत करो, ये मत करो कि अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और तुम्हारी व्हाट इज योर हॉबीज, व्हाट यू डू, ये सब चीजें पूछने का नहीं है ज्यारतों में।
हुक्म क्या है? आंख में आंख डालो बस, वो भी अगर बेहतरीन तरीका आंखों को नीचे कर लो, नीचे करके बात करो, इधर उधर देख के बात करो। लड़कों को भी चाहिए कि हिजाब कर। बॉम्बे में तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही? मैं बड़ी अफसोस से बोल रहा, अफसोस से बोल रहा, मैंने रिजवी में बोला है लेकिन बहुत कम बोला था। जितना आज हमारे पास हमारा हमारे कल्चर में, हमारे कल्चर में, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, बॉम्बे मुंबई बोल रहा, मुंबई बोल रहा, ड्रग्स आ गए बच्चों में, गैम्बलिंग शुरू हो गई, ओखा पार्लर्स में जाके क्या कर रहे हैं? वाई फिर ये आजादारी, फिर वॉक टू पैराडाइज, फिर ये ज्यारत। ऐसा रिस्क को अल्लाह और जिंदगी के रस्सी को काट देगा ना, तुम रियलाइज ही नहीं करोगे कि क्या होगा। हराम है बाबा, हराम है ड्रग्स। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बोल रहा, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बोल रहा, मेरे यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की दोनों को, कि अपनी कंपनी को चेक करो। तुम फिर ज्यारत में जा रहे, कंपनी को चेक करो कि किस कंपनी के साथ तुम मूव हो रहे, किन लोगों के साथ तुम मूव हो रहे। अगर ये चलते रहेगा तो तुम्हारी ज्यारत का फायदा क्या है? फायदा क्या है? एक स्टार्ट होगा, उसका एंड यू नो डेट। आपने तो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा बाहर, कितना डिजास्टर नहीं है हमारी कम्युनिटी का, कि अगर हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे, हमारे बच्चे ड्रिंक्स की तरफ जा रहे, हमारे बच्चे गैम्बलिंग कर रहे, वेरी सैड। देन हाउ कैन यू से कि यू आर फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन? हाउ कैन यू से? प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा तुमसे, रिक्वेस्ट कर रहा, अब तक जो हुआ ना वो छोड़ के अब करबला जा रहे ना, ज्यारत पे जा रहे, तो जस्ट से सॉरी टू योर इमाम और बोलो कि मौला मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू अगेन। ये तुम्हारी जिंदगी डिजास्टर है, तुम्हारी लाइफ का डिजास्टर है ये लाइफ का। और आज इट्स सो कॉमन, सो कॉमन, कि इतना कॉमन हो गया कि मैं अफसोस से मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता अभी इसमें। इस चीज से बचो, अगर ड्रग्स की तरफ चले जाओगे, गैम्बलिंग की तरफ जाओगे, तो तुम क्या समझ रहे? उसके बाद तुम करबला जाओगे ज़ियारत पे अरविंद को, एंड यू आर गोइंग टू से सलाम टू इमाम हुसैन? यजीद करता था गैम्बलिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यजीद वॉज डूइंग दिस गैम्बलिंग। जब अहले हरम पहुंचे तो वो गैम्बलिंग कर रहा था, वहां पर जुआ खेल रहा था, ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था। इमाम हुसैन ने जिहाद किया। चौथे इमाम का जुमला आबिद बिलग्रामी का जुमला नहीं है, चौथे इमाम कहते कि मेरे चाहने वालों, मेरे बाबा के आज़ादारों, मेरा मातम करने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत का दम भरने वालों, तीन काम कभी नहीं करना, कभी गैम्बलिंग नहीं करना, गैम्बलिंग, कभी ड्रिंक नहीं करना, कभी दाढ़ी को नहीं मोड़ना। हमको दरबार यजीद याद आता है, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूं? प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा आपसे कि डोंट स्पॉइल योर ज़ियारत। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं ज़ियारत पे जाऊँ और मेरी ज़ियारत हुसैन एक्सेप्ट कर ले, कोई गारंटी नहीं। अगर मैं जाके गुनाह करूँगा, मैं जाके वहाँ पे नमाज कज़ा करूँगा, मैं जाके वहाँ पे गीबतें करूँगा, मैं वॉक टू पैराडाइज कर रहा हूँ, जन्नत की तरफ जा रहा, और मैं जो है गीबतें करते जाऊँगा रास्ते भर, मैं लोगों से चैट करूँगा, लोगों की बातें करूँगा, तो व्हाट यू थिंक? हुसैन को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको हुसैन की ज़रूरत है। बस ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मुझे देना था। सलवात पढ़ ले मोहम्मद। एक बाबा से वलन सलवात पढ़ो। दोस्तों एक ऐलान कर दूं और, कि इंशाल्लाह दिवाली के हॉलीडेज में अल मुंतजर टूर्स करबला मौला लेके जा रहे, यू कैन जॉइन देम। और 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को
उम्रे पे भी जा रहे हैं और उस उम्रे के ग्रुप में मैं उस ग्रुप को लीड करूंगा इंशाल्लाह। उम्रा जो एक हफ्ता 10 दिन का जो हॉलीडे सीजन होता है क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, इफ यू वांट टू जॉइन जस्ट जॉइन अल मुंतजर, इसलिए कि उस ग्रुप को मैं लीड करूंगा। जैसे मैंने पूरा मक्के और मदीना मुनवरा की पूरी डिटेल्स बताई है, तो व्हेन यू कम विद मी आई विल शो यू एवरीथिंग इंशाल्लाह। ये ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो और जिसको चाहे ज्वाइन करो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अल मुंतजर को मैं लीड करूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इकबाल चावी साहब और अब्बास वीरानी से कॉन्टेक्ट करें, दे विल टेल यू। दूसरी चीज, कल बात पहुंची थी काजमैन में, नवे इमाम के बारे में मैंने बताया था, और आज और कल दो मदीस हैं। सामेरा ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, वैसे हर जगह इंपॉर्टेंट है। सामेरा ये पहले कोई सिटी नहीं थी। अब मैं सामेरे की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं, फिर मैं सामेरे के 10वें इमाम के ऊपर आता हूं। सामेरा जो है मौला के जमाने में, 5वें इमाम के जमाने में, 6वें इमाम के जमाने में, इवन 7वें इमाम के जमाने में, 8वें इमाम के जमाने में सामेरा कोई सिटी नहीं थी। सामेरा जैसा बगदाद को मंसूर दोआनखी ने शुरू किया, बनी अब्बास का जो हाकिम था, जो 6वें इमाम का कातिल है, और हारून रशीद ने उसको पूरा बनाया। मैंने उसकी डिटेल बताई आपको। उसी तरह सामेरा जो है ये दूर है, बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इराक है। सामेरा इज नॉर्थ ऑफ इराक, और बिल्कुल तुर्की की तरफ, कुर्दिस्तान की तरफ है, बिल्कुल नॉर्थ ऑफ इराक में। शुरू से ये सिटी दुश्मनान अहले बैत की, मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा हूँ, शुरू से दुश्मनान अहले बैत की सिटी है, शुरू से, आज नहीं, शुरू से। और ये सिटी का बानी जो है, फाउंडर जो है, वो मुतवक्किल है। मुतवक्किल वो, ये ऐसा जालिम है कि हमारे इमाम अली का एक सरमन है बनी अब्बास के खुलफा के ऊपर, कहा जिसका पहला ये और आखिर में कहा जिसका 10वां ऐसा होगा कि उससे बड़ा काफिर कोई नहीं होगा। इमाम अली बोलते हैं, बनी अब्बास के हुक्मरानों की बात कर रहे हैं। तो मुतवक्किल ने इस शहर को आबाद किया। क्यों आबाद किया? बगदाद कैपिटल था बनी अब्बास का, और मुतवक्किल भी बनी अब्बास का एक खलीफा है, तो बनी अब्बास का कैपिटल बगदाद था। यहां पे जुल्म और चोर और तकलीफें शुरू हो गई थी, तो यहां पे एक रिवोल्यूशन आ रहा था, लोकल रिवोल्ट हो रहा था। तो इस रिवोल्ट को खत्म करने मुतवक्किल ने लगभग 14 साल लिए, 2220 हिजरी से 234 हिजरी तक मुतवक्किल ने, ये बड़ा जालिम, ये वो एक, ये ऐसा हुक्मरान है दो बनी अब्बास के, हारून रशीद और मुतवक्किल, इन दोनों ने मौला हुसैन की खबर मुबारक को, उनकी ग्रेव मुबारक को तोड़ दिया था, इन्हें जमीन दोज कर दिया था। और भी कई रिवायतें, वो मैं नहीं पढ़ता, ऐसी रिवायतें कि खबर को डिग भी किया था इस जालिम ने, तो मैं नहीं पढ़ा वो, बहरहाल खबर को, खबर मुबारक को रेस कर दिया था। यही वो जालिम है मुतवक्किल, कि जिसने दरिया के पानी, दजला के पानी को पूरा करबला की तरफ ले लिया था, कि पानी पूरी रिवर इधर आए और खबर हुसैन मिट जाए। उसके बाद उससे भी उसके तो पानी इधर आया, दजला का पानी इधर आया, लेकिन मोजिजा हुसैन इब्न अली की ताकत ये जहन में समझ रहा कि मैं जो चाहे करूँगा। उसको ये नहीं मालूम कि हुसैन की ताकत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, ज़मीन और आसमान पर ताकत है। तो और पानी आता था, मौला हुसैन की खबर मुबारक का सर्कल करता था, मौला अब्बास की खबर मुबारक का सर्कल करता था, चला जाता, तो इसको बर्दाश्त, क्रॉस भी नहीं करता था रिवर का पानी। उसके बाद इसने क्या किया, खेती की, खेत लगा दिए, चावल के जो भी खेती कर दी, कि यहाँ निशानी मिट जाए। लेकिन ये कब तक? मुतवक्किल खत्म हो गया, हुसैन है, हुसैन से टक्कर लोगे तो यही हशर होगा। जो भी लेगा, आज का कोई मुतवक्किल हो या उस दिन का मुतवक्किल, टक्कर अगर हुसैन से लोगे, अल्लाह अपने गुनाहगार को माफ करता, हुसैन के गुनाहगार को नहीं करता, ये याद रखो। सबसे टक्कर ले लो, हुसैन से टक्कर मत लो, जलील और रुस्वा होगे। तो 14 बरस इसने इस सामेरे को कैपिटल बनाया, तो पूरी बनी अब्बास डायनेस्टी का जो कैपिटल बगदाद था वो शिफ्ट हुआ सामेरे के थ्रू। ये जो 14 साल रहे, इसमें जैसा 5वें इमाम और 6वें इमाम को जब बगदाद बन रहा था, तो मंसूर दोआनखी का जमाने में एक हुकूमत खत्म हुई थी बनी उमैया की, और बनी अब्बास की शुरू हुई, और उन लोगों ने कैपिटल बगदाद बनाया था। तो जब पांचवे और छठे को जैसे मौका मिला, टाइम मिला कि वो शियत को प्रोपोगेट कर सके, आपको मालूम है कि मस्जिद नबवी में छठे इमाम के ज़माने में 900 क्लासेस चलती थी, 900 वो बेल्ट में, वो पूरे एरिया में। आप बोलेंगे क्लासेस 200 आदमी 300 आदमी की बात नहीं करा, 900 मौलिम थे, मौलिम ने पढ़ाने वाले टीचर्स जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के लोगों को तालीम दे रहे थे। बाखेद एक पूरी हमारे इमाम की यूनिवर्सिटी थी जो चल रही थी वो पांचवें और छठे इमाम के ज़माने में। इसीलिए आज हमारे पास इरशाद है मासूम का कि अगर तुम इल्म में इजाफा चाहते, नॉलेज में इजाफा चाहते, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी दुआ है कि बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे, बच्चों की मेमोरी शब फेल हो रही, जितने दुनिया का इल्म हो या आखिरत का इल्म हो, दीनी इल्म हो, उसके लिए हमेशा वास्ता पांचवें और छठे का देके अगर अल्लाह से दुआ करे तो उसकी मेमोरी शार्प हो जाती, उसको जो याद कर रहा वो याद रहता, अल्लाह उसके इल्म में इजाफा करता। तो मासूम छठे इमाम ने 900 मौलिम उनके ज़माने में थे, और हर मौलिम जिसमें अबू हनीफा साहब भी थे, समझ में आई बात, तो हर मौलिम ने कहा था कि जो इल्म हमने लिया है वो जाफर इब्ने मोहम्मद से लिया है। तो पांचवें और छठे का ज़माने में जैसा मदीना था, फिर सातवें के ज़माने में हारून ने इमाम को क़ैद कर लिया तो क़ैद हो गए, तो फिर ये मदरसे बंद हुए। आठवें का ज़माना जब आया गरीब इमाम का, तो उसने इमाम को वहाँ बुला लिया, कहाँ पर, ईरान में, और यहाँ पे मदरसे बंद हो गए। नाइन्थ इमाम के ज़माने में, नवे इमाम सबसे कम सीन इमाम है, आपने कल सुना 195 हिजरी विलादत है, 220 हिजरी शहादत है। तो उसने क्या किया, नवे इमाम को अपने पास बुलाया, 6-7 साल का सीन था, कल आपने सुना, उसको रिपीट नहीं कर रहा, और वो अपने महल में रखकर वो चाहता था कि इमाम को चेंज करे, लेकिन उसके जहन में ये बात आई कि मैं चेंज करूँगा, लेकिन उसको नहीं मालूम कि ये अल्लाह की हुज्जत है, ये दुनिया में आके तालीम को हासिल नहीं करता, यह दुनिया में आके किसी की परवरिश का मोहताज नहीं रहता, उसमें बनी अब्बास फेल हुए। दसवें इमाम जब दसवें इमाम की विलादत बता दूं मैं आपको, कि 5 रजब 5th रजब 212 हिजरा में दसवें इमाम की विलादत, मदीने मुनवरा से छोटी सी एक जगह 4-5 किलोमीटर के ऊपर एक छोटा सा रिमोट विलेज था, वहां पे आपकी विलादत हुई। और आपकी शहादत है नवे दसवें इमाम की शहादत है 3 रजब 254 हिजरी, 255 हिजरी हमारे इमाम की विलादत है, और 254 हिजरी में दसवें इमाम की शहादत है। ये 42 ईयर्स ये जिंदा रहे, हमारा दसवां इमाम सिर्फ 42 ईयर्स जिंदा रहा, 25 ईयर्स नवे इमाम है, और 29 ईयर्स जो है 11वें इमाम है। ये तीन इमाम बहुत कमसिन शहीद हो गए। तो दसवें इमाम की विलादत मदीने मुनवरा, शहादत सामेरा, सामेरा कैसा गए मैं अभी आपको बताऊंगा, सामेरे में शहादत हुई, 3 रजब को शहादत है 254 हिजरी, और 5 रजब को आपकी विलादत है 212 हिजरी में। ये इमाम का छोटा सा डिस्क्राइब किया। और आपके बाबा हमारे नवे इमाम इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, और आपकी वालिदा गिरामी सुमाना खातून, सुमाना, सुमाना आपकी माँ का नाम था, कि दसवें इमाम ने खुद अपनी माँ के बारे में वो जुमले इस्तेमाल किए कि मेरी माँ ऐसी पाक और पाकीज़ा थी, मेरी माँ वो खातून थे कि इतनी इबादत, इनके बारे में मशहूर है जनाब सुमाना खातून के सिवाय जिन जिनों में रोज़े हराम हैं उसके अलावा साल भर रोज़े रखती थी और रातों में इबादतें करती थी। दसवें इमाम ने खुद अपनी मादर गिरामी के नाम में कहा आपका नाम है सुमाना। ये वो नाम है दोस्तों कि अपनी लड़कियों के नाम नाम रखो। कल भी मैंने कहा था, आज मैं रिमाइंड कर रहा आपको कि अपनी बच्चियों के नाम मॉडर्न नेम्स के चक्कर में मत जाओ। मॉडर्न नेम्स को लेकर तुमको करना क्या है, अगर तुम्हारी बच्ची मॉडर्न बन जाएगी तो क्या होगा? मैं जो बोलना था मैंने बोल दिया यार, बॉम्बे में अगर मॉडर्न बन जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। तो बच्चियों के नामों के चक्करों में मत जाओगे, ये तारीफ होगी, बच्ची के नाम की तारीफ नहीं होती, उसके किरदार की तारीफ होती, उसके कैरेक्टर की तारीफ होती, नाम का असर होता है। इनका नाम सुमाना खातून सभी का, कल मैंने बताया ये नाम रखते हैं, हमको सना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको नाम नहीं ले, अगर किसी का नाम है तो नाराज हो जाएंगे। I don't want to mention the names. तो ये चक्कर में मत जाओ, उस नरजिस रखो नाम। नरजिस अगर किसी का नाम है लड़की का तो उसकी जिंदगी में खुशबू आती है, गुड स्मेल। नरजिस खुशबू का ब्यूटिफुल स्मेल, गुड स्मेल, खुशबू जिसको आप बोलेंगे। तो खुशबू आती, अगर लड़की की जिंदगी में खुशबू आ जाए ना तो कहां से कहां चले जाएंगे, ब्राइट उसका फ्यूचर ब्राइट होता जिसके जिसका नाम दर्ज। तो मैं तो हमेशा एक एडवाइस करता कि बीबी का नाम रखो और उनकी आखिरी बहू का नाम रखो, नहीं समझे आप, लास्ट डॉटर इन लॉ और बीबी जहरा के नाम के साथ नाम रखो, जहरा नरजिस रखो या नरजिस जहरा रखो, यू जस्ट सी जिन जिन लड़कियों के नाम ये दो नामों के साथ, ये दो कॉम्बिनेशन है कि बीबी का नाम और उनकी आखिरी बहू का नाम, आखिरी डॉटर इन लॉ का नाम, फिर देखो तुम्हारी लड़की, वो नाम रखने से फायदा मां बाप का भी है, मां बाप का ये फायदा है कि जहरा से रोशनी है, नरजिस से खुशबू है, जब तक बच्ची तुम्हारे दरमियान में तुम्हारी जिंदगी में रोशनी होती जाती, घर के अंधेरे खत्म हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, लेकिन फिर वो कंडीशन के साथ है, जहरा नरजिस भी है और वो बेपर्दा भी है तो वो फायदा नहीं है। तो बहरहाल वो कंडीशन की मैं बात नहीं करता, मैं आपको बता रहा कि कितना फायदा है कि आपकी माँ का नाम सुमाना खातून था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पायस लेडी, आपकी विलादत मदीना और शहादत सामेरा, आपके आपका एज जब 8 ईयर्स की थी, दसवें इमाम का नाम है अली, ये खानदान इमामत का चौथा अली है, फोर्थ अली है, पहला हमारा इमाम मौला अली, चौथे इमाम, आठवें इमाम और दसवें इमाम, आपका नाम अली है, आपके दो टाइटल्स जो है, और अच्छा आपकी कुनियत अबुल हसन है, हमारे चार इमामों की कुनियत अबुल हसन है, अजीब बात है, इमाम अली की कुनियत अबुल हसन है, सातवें इमाम की अबुल हसन है, आठवें इमाम की अबुल हसन है और दसवें इमाम की अबुल हसन है, कुनियत जो पुकारा जाता था, इन्हें बेटे से बाप का नाम जो लेते अबुल हसन, अबू अली, मौला हुसैन को अबू अब्दुल्ला, इस तरह। तो आपकी कुनियत चार इमामों की कुनियत अबुल हसन है, और आपका जो मशहूर टाइटल है वो नखी है और हादी है, हादी हमारे कई इमामों के हैं लेकिन अरब में हादी बड़ा मशहूर है, नखी उतना मशहूर नहीं, आपके जो टाइटल्स है वो नखी और हादी, हादी यानी हिदायत करने वाला। तो ये आपके दो, मैंने उनके जिंदगी का एक छोटा सा वो स्केच खींचा कि क्या क्या आपकी माँ का नाम, आपके बाबा का नाम, आपकी विलादत, आपकी शहादत, आपका नाम, आपका पीरियड ऑफ इमामत, ऑलमोस्ट ये 8 साल की एज से इनकी इमामत शुरू हो गई थी, जब नवे इमाम की शहादत हुई तो इमाम अली नखी अलैहिस्सलाम उस वक्त 8 ईयर्स थे, 8 ईयर्स के थे, इनके बाबा नवे इमाम 7 ईयर्स के थे और ये 8 साल के थे, मदीने में 8 साल का सिन, जब अब आप सुनो नवे इमाम की शहादत के सातवें सात नवे इमाम की शहादत के बाद मुतवक्किल जैसा जालिम बैठा बाबा, 14 साल उसने निकाले सामेरा को बिल्ड करने के लिए, सामेरा बिल्ड हुआ, सामेरा कैपिटल बन गया और सामेरा डिफेंस एक कॉलोनी बन गई, छावनी जिसको बोलते हैं कि आर्मी की छावनी, यानी बनी अब्बास की हुकूमत का मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर था वो सामेरा था शुरू से, ये नॉर्थ ऑफ इराक में है, तो वहां से बैठ के ये लोग कंट्रोल करते थे। तो सामेरे में इधर इमाम दसवें इमाम मदीने मुनवरा में है, 8 साल के है, हुकूमत जानती है कि इनके बाबा को हमने 7 साल में अपने दरबार में बुलाया लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ, अपने महल में रखा कोई फायदा नहीं हुआ और अब हम इनको बुलाएंगे नहीं, तो इसने क्या किया कि उस जमाने का एक बहुत बड़ा मुसलमान, गौर से सुनो, बहुत बड़ा मुसलमानों का आलिम और शायर जुनेदी, अरबी का बेहतरीन शायर, बहुत बड़ा और दुश्मन अहले बैत, यानी खून में दुश्मन अहले बैत, और सबसे बड़ा जैसे कल आपने सुना यहिया इब्ने अक्सम का किस्सा, आज जुनेदी ये इतना बड़ा अरब की में आज भी इसके अशार मौजूद है, आपको अगर अल अज़हर यूनिवर्सिटी आप जाएं तो वहाँ पे इसके जो पोएट्रीज हैं जिसने अशार लिखे शायरी की वो 1000, 2000 या 5000 शेर है। अब मैं आपको एक बात और रोक के बोलूँ, अल अज़हर में और भी एक बड़ी चीज़ है, पहला शायर कौन था मदे रसूल करने वाला, फर्स्ट पोएट जमीन के ऊपर, पहला शायर जुनेदी वुनेदी तो सब बाप के, पहला शायर मक्की था, वो था कि जिससे बड़ा मोहसिन इस्लाम कोई नहीं, हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब वो पहला शायर है, पहला पोएट है कि जिसने रसूल अल्लाह की शान में सबसे पहले नात कहे। आपको मालूम है कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो इस्लामिक
کلچر کی، ہمارے مذہب کی، پورے مسلمانوں کی جو بیس ہے اس وقت الازہر یونیورسٹی کیرو میں جو ہے، میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہیں پہ بی بی زینب کا روضہ بھی ہے، وہیں پہ مولا حسین کے نام کی مسجد بھی ہے جہاں راسل حسین لکھا ہو. بہرحال میں نے وہ زیارت کی، الازہر کو دیکھا، گیا اس یونیورسٹی میں گیا ہوں. تو الازہر یونیورسٹی میں آج یقین کرو گے 20,000 جناب ابو طالب کے وہ اشعار ہیں جو جنہوں نے رسول کی شان میں کہے. مذاق نہیں ہے. ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام، میری ٹاپک ابو طالب نہیں ہے لیکن جنیدی کا نام آیا تو بول. اب تو متوکل نے کیا کیا، اس نے یہ کہا کہ جنیدی اتنا بڑا مسلمانوں کا عالم جس کی توتی بول رہی، جو شاعر بھی ہے، اس نے متوکل نے لیٹر لکھا مدینے کے گورنر کو اور کہا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان کے بابا ساتویں امام 7 سال میں یحییٰ ابن اقسم کو تباہ کیا. ڈیبیٹ، کل آپ نے پورا ڈیبیٹ سنا، تو اب ان کو بدنام کیسے کرنا، علم کے ذریعے. کہا کہ جو گورنر کو لیٹر لکھا کہ جو علی ابن محمد ہے، جو نو امام کے وارث ہیں، ان کو بولو کہ جنیدی کے پاس بیٹھ کے علم کو سیکھو، اس لیے کہ 8 سال کے ہیں. کین یو امیجن کتنی ایک ماذا اللہ انسلٹ ہے. اور اگر نہ سیکھیں تو جتنے بنی ہاشم ہیں ان کو قتل کر دو. میں لے بنی ہاشم سن، اپنے متوکل وہ ظالم تھا. میں اگر آپ کو قصے اس کے واقعہ سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ رسول کا وارث کہلا رہا متوکل، وہ ظالم ترین جو کربلا کو تباہ کرنا چاہ رہا تھا. ہر اس وہ برداشت نہیں کرتا تھا. سامرے میں بیٹھا ہوا ہے، 10ویں امام کا زمانہ، وہ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی بول دے کہ میں امام علی کا شیعہ ہوں، برداشت نہیں کرتا، قتل کر دیتا. تو اس نے کہا کہ بہترین ماذا اللہ انسل کیا ہوگی کہ امام، جب بھی کوئی امام کوئی حدیث بیان کریں گے تو ہم بولیں گے کہ یہ تو جنیدی کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا علم کچھ نہیں ہے. اس طرح مقام امام کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا. اس کو کیا معلوم جاہل اور ظالم کو کہ امام اپنے کردار سے سب کو بدل دیتا، اپنے اخلاق سے بدلتا، اپنے علم سے بدلتا. جنیدی کے پاس گورنر آف مدینہ کا لیٹر آیا اور اسے کہا کہ تجھے جا کے علی ابن محمد کو سکھا. اس نے کہا یہ تو بہترین موقع ہے اپنے علم کو بتانا اور دشمنی اہل بیت دل میں بھری ہوئی. وہ آیا امام کے پاس آیا. دوستو اب سنو، 8 دن 15 دن یا 1 مہینہ گزرا، ایک جنیدی کا شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھا، جنیدی کا خود پورا ایک لیٹر ہے جو تاریخ میں موجود ہے، پورا اس کا، اب جو میں پڑھ رہا وہ پوری اس کا ایک لیٹر ہے جو اس نے ہسٹری میں آج بھی موجود ہے. اس نے پوچھا اس کے اسٹوڈنٹ نے جنیدی سے کہ جنیدی یہ بتا، آج کل تیرا نیا اسٹوڈنٹ کا کیا حال ہے، نئے شاگرد کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کون نیا شاگرد؟ تو کہا وہی علی ابن محمد. اس نے کہا تم اس کو شاگرد بول رہے؟ دیکھو کیسا کردار سے بدلا جنیدی، کہا شاگرد بول رہے؟ اب وہ مجھ سے علم سیکھ رہا، گیا تھا سکھانے، اب میں اس سے سیکھ رہا. اس کا علم کا، جنیدی کا جملہ تاریخ کا، اس کے علم کا یہ عالم، وہ قرآن کے ساری تاویلات کو پیش کر رہا ہے، وہ اس کو محکمات معلوم ہے، متشابہات معلوم ہے. آج ہمارے بچوں کو کیا، بڑوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے قرآن کی. قرآن رٹ کے پڑھتے ہیں نا، روٹین میں پڑھتے ہیں. قرآن کی تفسیر بھی پڑھو، قرآن کے معنی بھی پڑھو، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے. محکم اور متشابہ نے کلیئر اینڈ انکلیئر آئے تھے. محکم مطلب کلیئر آئے تھے، متشابہ مطلب انکلیئر آئے تھے. قرآن مجید کی کئی آیتیں، کئی سوروں میں کئی ہزار آیتیں، اب تو کافی کلیئر ہوگی، جو وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، زمانے کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، کلیئر ہوتی گئی. محکم اور متشابہ، میں پوری تقریر اسی پہ کر دوں، میرا ٹائم نکل گیا. میں افسوس سے بول رہا کہ 45 منٹس کی مجلس ہو گئی، صرف 15 منٹ مصائب بھی ختم کرنا، کل میری 10 منٹ زیادہ ہو گئی تھی، آج میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں گا. سب کے آئی بروز کھڑے ہو گئے کل، کیوں آئی بروز کھڑے ہوئے آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی بروز کھڑے ہو گئے کہ واٹ مولانا ہیز ڈن، 10 منٹس ایکسٹرا، مطلب ہاؤ ڈے یو. یہ تھا وہ، تو
मैं अपने वक्त पर खत्म कर रहा, 15 मिनट मेरे पास, 14 मिनट खाली। तो इसने कहा, जुनेदी ने कहा, तू किसकी बात कर रहा? उसको मोहकमात मालूम जो मुझे नहीं मालूम, मुतशाबहात मालूम मुझे नहीं मालूम, तावीलात बोलता मुझे नहीं मालूम। कहा मैं उसका, वो मेरा शागिर्द नहीं, मैं शागिर्द हूं। मैंने चंद दिनों में उनको देख लिया कि मेरा जो इल्म है, जो मैं अब तक समझ रहा था कि पूरी ममलिकते हुकूमत अरब का सबसे बड़ा आलिम मैं हूं, आज मैं आलिम नहीं हूं, मैं उसके सामने खतरा हूं, वो समंदर है। ये जुनेदी के जुमले हैं, 10वें इमाम के, 8 साल के थे 10वें इमाम। लेकिन मुतवक्किल अपने जुल्म के साथ चलने लगा। उसने क्या किया, 10वें इमाम को जो 14 बरस मिले, 220 हिजरी से 234 हिजरी तक, ये 14 ईयर्स में 10वें इमाम के पास एक मिशन था, इल्म जो 5वें और 6वें ने पहुंचाया था, फिर 7वें और 8वें और 9वें में ब्रेक हुआ था, फिर 10वें इमाम, तो इल्म को इतना फैलाया उसी अंदाज से जैसे 6वें इमाम ने मस्जिद नबवी में पूरा इल्म को फैला के इतने मदरसों को, और उसके बाद इमाम ने तमाम लोगों को हदीसों को, इसलिए कि इमाम, गौर से सुनना, बड़ा नाजुक पीरियड से मैं गुजर रहा जो मैं आपको बयान कर रहा, इसलिए कि ये पीरियड में मुझे 2 मदीसें चाहिए आपको खाली वो पीरियड एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए कि जितने बनी अब्बास के हुक्मरान थे, जितने रूलर्स थे बनी अब्बास के, उनको मालूम था रसूल अल्लाह की वो हदीस उनके जहनों में थी कि मेरे बाद रसूल की हदीस है, कि मैं ये सारे मुसलमानों की किताबों में ये हदीस है, ये कोई शिया हदीस नहीं बोल रहा, कि मेरे बाद मेरे 12 सक्सेसर्स होंगे, मेरे बाद मेरे 12 जानशीन होंगे और सारे खुरैश में से होंगे, और वो जान जिसका पहला अली होगा, आखिरी मोहम्मद होगा, और उसके बाद ये बनी अब्बास की हुकूमत देख रही थी, इमाम ने, रसूल ने ये भी कहा था, जो मेरा आखिरी होगा, जो मेरा लास्ट सक्सेसर होगा, वो आकर दुनिया से जुल्म को खत्म करेगा, जोर को खत्म करेगा, अदल को नाफिज करेगा, इंसाफ को नाफिज करेगा, हर चीज वो करेगा। तो इनके जहनों में ये था कि अगर अब इनका 10वां तक तो आ गया, अब ये चाह रहे थे कि 11वां आ गया, इसलिए 11वें इमाम ये समझ गए, ये चाह रहे थे कि 11वां भी ना आए, 12वां भी नहीं आए, जबकि रसूल ने ये भी कहा था कि मेरा आखिरी जो होगा उसका जमाना बड़ा तवील होगा, ये लोग वो समझ नहीं पाए, ये लोग ये बोल रहे थे अब तो 10 आ गए, 11वां आएगा 12वां आएगा, तो होगा क्या, हमारी हुकूमत खत्म होगी। जानता है ना, जालिम को तो पता होता है ना कि उसने कितना जुल्म किया, उसको ये भी पता था कि अब जुल्म होगा तो मेरी हुकूमत खत्म होगी। तो ये लोगों ने क्या किया, मुतवक्किल ने, और अजीब बात मैं आपको बोलूं कि इनका, इनके रसूल की ये भी हदीस है कि जो मेरा आखिरी होगा, जो मेरा आखिरी, फिर सुनो, जो मेरा आखिरी वारिस होगा उसकी माँ जो है कोई शाही खानदान से, मिसाल दे रहा, रॉयल फैमिली की होगी, तो बनी अब्बास अपने आप को रॉयल फैमिली समझ रहे थे। उन लोगों ने ये चाहा था कि 11वें इमाम का निकाह ही नहीं होना, 11वें इमाम की शादी नहीं होना, शादी नहीं होगी तो हम जो है इनको कोई, इनको बच्चा नहीं होगा, और दूसरी चीज 10वें इमाम और 11वें इमाम को ऑलमोस्ट इनकी पूरी लाइफ, 29 ईयर्स के 11वें इमाम और 42 ईयर्स के 10वें इमाम, इनकी जिंदगियों में 10-10, 15-15 साल इन लोगों ने कैद कर दिया, इसलिए कि कैद में रहेंगे तो ना कोई दूसरा आएगा, ना 12वां पैदा होगा, ये अपने ज़हन में सोच रहे। कल 11वें इमाम का जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा। तो 10वें इमाम ने क्या किया, इसको मुतवक्किल ने क्या किया कि 10वें इमाम को, 10वें इमाम को मदीने में 14 साल टाइम मिला, उन्होंने प्रोपोगेट किया, और इमाम इधर क्या कर रहे थे, इमाम के जहन में एक चीज थी कि अब मैं, मेरे बाद 11वां है, उसके बाद 12वां आएगा, 12वां आएगा तो वो पर्दे में चले जाएंगे, अब मेरी शियत का क्या होगा, इतनी मेहनत जो हम अल्लाह के रसूल ने की है, पूरे इमामों ने जो मेहनत की, वो मेहनत ये होगी कि शियत बढ़ जाएगी। बड़ा नाजुक जमाना आ गया कि इमाम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इमाम को क़यामत तक के हालात को देखना था, तो इमाम आदत डाल रहे थे, इमाम अपने चाहने वालों को बता रहे थे कि कोई गैबत आने वाली है, मेरे बाद हसन अस्करी, उसके बाद जो पीरियड शुरू होगा वो बड़ी गैबत का पीरियड होगा, ओकल्टेशन का पीरियड होगा, तुमको प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन तुम मजबूत रहना। तो इस पीरियड में 10वें इमाम बार बार अपनी बेटे की, ग्रैंडसन की, पोते की गैबत बता रहे कि देखो गैबत आने वाली है, तुम लोग ईमान के साथ रहना, मुस्तहकम रहना, अपने अकीदे को, अपने मजहब को छोड़ना नहीं, इमाम इधर बता रहे। और इधर मुतवक्किल ये चाह रहा कि इमाम बिल्कुल हट जाए, शिया से हट जाए, शिया लोगों से इमाम का कोई कांटेक्ट ना हो। उसने क्या किया, 10वें इमाम को, 11वें इमाम को और पूरी फैमिली को मदीने से सामेरा बुला लिया, मदीने से सामेरा बुला, मदीना उजड़ गया, मेरे जुमले गौर से सुनो, मदीना उजड़ गया 10वें इमाम तक, इन्हें 240 हिजरी, 240 ईयर्स तक मदीना आबाद था। कैसे, इल्म से उजड़ा, किससे, इल्म से, इल्म खत्म हो गया। जब इमाम वहां से हिजरत करके। मुतवक्किल ने जब बुलाया दसवें इमाम को, तो दसवें इमाम जब वहां पहुंचे तो ग्यारहवें इमाम भी चले गए साथ, फैमिली भी चले गई साथ, सब मुंतकिल हो गए सामेरा, और सामेरे में मुंह हो गए तो मदीना। अब जब उजड़ा 240 हिजरी में जो उजड़ा, अब कयामत तक मदीना वैसी रहेगा। इसलिए कि इवन जब जमाने का इमाम इंशाल्लाह जहूर करेंगे तो मदीने को अपना कैपिटल नहीं बनाएंगे। 240 हिजरी तक मासूमीन मदीने में थे, पहली हिजरे रसूल के जमाने से लेकर दसवें इमाम तक, लेकिन दसवें इमाम के जमाने में मदीना ऐसा उजड़ा कि अब हमेशा के लिए उजड़ गया। इल्म के बारे में क्लियर सुन लो बात, डोंट गेट कंफ्यूज, इल्म के मामले में उजड़ गया। अब जमाने का इमाम जब आएगा वो भी मस्जिद सहला में बैठेंगे, या बाज रिवायतों में मस्जिद कूफा है, कूफे को कैपिटल बनाएंगे। जैसे पहले अली ने कूफे को कैपिटल बनाया, वैसे आखिरी अली भी कूफे को कैपिटल बनाएंगे। मौला जो हुकूमत करेंगे वो कूफे से करेंगे। कल की मजलिस में शायद थोड़ा सा कुछ आ जाए, वही मेरा प्रॉब्लम के टाइम का फैक्टर, इतनी बड़ी टॉपिक ज़ियारत की। तो सामेरा उजड़ा, तो दसवें इमाम को इसने क्या किया, वहां बुला लिया। कहां बुलवा लिया? सामेरा। आज जो दसवें इमाम का रोजा है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मेरे मौला की ज़ियारत के लिए आखिर तक बावाज बुलंद मुंह खोल के सलावत पढ़ो, बस दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा वक्त निकल गया, मेरे पास 5-6 मिनट रह गए, मसाइब भी है। तो बस आखिरी हिस्से, आखिरी जुमले में इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा सामेरे की, फिर कल का एक ही दिन, एक घंटा कल है। तो दसवें इमाम को, आज जो दसवें इमाम का रोजा है सामेरा, सबके सामने जिन्होंने ज्यारत की उनकी निगाहों के सामने सामेरा, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनको जल्द से जल्द करा। मेरे मौला की जरूरत, मौला का जो जरी है सामेरे में, जो दसवें इमाम की ग्यारहवें इमाम की जरी है, आज आज का जाहिर जब जाता, इससे पहले जब से ये एक्सप्लोजन हुआ वहां, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ऐसा नहीं था, अब जैसा है। उससे पहले के जरिए में सिर्फ दो जरी नजर, दो ग्रेव नजर आते, अब दो ग्रेव नजर नहीं आते। अब बिल्कुल लेटेस्ट जो मामला, अभी मैं जिलिज में वहीं था, जिलिज में जो लेटेस्ट अब जो है दसवें इमाम की जहां खबरें मुबारक है, वो आपका घर था, उसी घर में आप हाउस अरेस्ट जिसको बोलते ना, ये जालिम ने किया था, जहां आपकी शहादत हुई वहीं पर आपको दफन किया गया। दसवें इमाम भी वहीं दफन है और ग्यारहवें इमाम भी वहीं दफन, वो उनका घर था, मतलब वो प्लेस को दसवें इमाम ओन करते थे। और जो ये सरदाब मुकद्दस है, जो बेसमेंट के जहां पे हम लोग जाते हैं, वो कल सुनना, कल कल की मजलिस में, कल की इस वेरी इंपॉर्टेंट मजलिस, जमाने के इमाम का भी कुछ जिक्र आएगा, बीबी नरजिस का भी जिक्र आएगा। तो वो जो बेसमेंट है वो इमाम के, दसवें इमाम के घर का बेसमेंट है, और उसी जगह पे हमारे इमाम की विलादत भी, एक रिवायत से, एक रिवायत से विलादत उसी बेसमेंट में हुई, कि जो आज बहुत बड़ा शानदार बेसमेंट बन गया, लेकिन पुराने जमाने में छोटा बेसमेंट था। तो दसवें इमाम का घर ये था और ये बेसमेंट, ये बेसमेंट क्यों बनाया था इमाम ने, ये इमाम के जमाने का बेसमेंट है। पुराने जमाने में एयर कंडीशन सिस्टम नहीं था, ना फैन सिस्टम था, तो होता क्या था कि अरब की गर्मी, इराक की गर्मी और जबरदस्त गर्मी, तो हर घर में क्या होता था, नीचे बेसमेंट्स होते थे। गर्मियों के जमाने में, समर में लोग नीचे आकर रह जाते थे, ऊपर नीचे थोड़ी ठंडक रहती थी, ऊपर का हिस्सा गर्म रहता था। तो ये बेसमेंट जो है, ये वही बेसमेंट है कि जहां पे आखिरी मर्तबा जमाने के इमाम से लोगों की मुलाकात हुई। इंशाल्लाह अगर मौला जिंदगी देंगे तो नेक्स्ट ईयर का आश्रम में इमाम के साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम पे पढ़ूंगा, इसलिए कि इस साल जो मैंने खैसरबाग में पढ़ा, मुझे 6-7 दिन में वो टाइम उतना नहीं मिला, 1 घंटा मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो साइंस में नहीं पढ़ सका। तो आइंदा साल के अर्शे में साइंस ऑफ रीअपीयरेंस ऑफ इमाम पढ़ूंगा, तो उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितने साइंस कंप्लीट हो गए और कितने कंप्लीट होने का है। तो ये जो बेसमेंट, ये भी एक वन ऑफ दी साइन में से है। बेसमेंट के अंदर जमाने के इमाम की विलादत भी है और दसवें इमाम का घर है। तो आज अगर आप सामेरे की ज्यारत करें तो पहली जो ग्रेव, जैसे आप एंटर होते, अल्लाह हमको बार बार जल्द से जल्द नसीब करे इंशाल्लाह, पहली जो ग्रेव है, पहली जो ग्रेव है वो दसवें इमाम की है, उसके बिल्कुल बाजू ग्यारहवें इमाम की है, उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बीबी हकीमा खातून है, जो दसवें इमाम की रियल ओन सिस्टर है, नवें इमाम की डॉटर है, दसवें इमाम की रियल ओन सिस्टर, और ग्यारहवें इमाम की फूई है और बारहवें इमाम की दादी है। इनसे कई रिवायतें हैं, इवन विलादत की 14 शाबान की जो रिवायतें, वो सारी बीबी हकीमा खातून से है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसके बाजू बीबी नरजिस खातून। तो आज जरी के अंदर चार ग्रेव्स है। बीबी नरजिस खातून जो है दसवें इमाम की वजह से, दसवें इमाम ने बीबी नरजिस को अपने पास बुलाकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ शादी की थी। ये दसवें इमाम के ज़माने में ग्यारहवें इमाम की शादी हुई। और बीबी नरजिस खातून जो आई, ये सीजर्स की ग्रैंड डॉटर थी, कल इनका वाकया सुनना। ये जब आई और आकर दसवें इमाम के हाथ पर इस्लाम को एक्सेप्ट किया, इमाम अली नखेल इस्लाम के। तो बहरहाल ये सामेरे की ज्यारत और वो बेसमेंट, बात को मैं यहाँ रोक रहा, मेरा वक्त कंप्लीट हो गया, 55 मिनट्स की मजलिस हो गई। मैं 5-6 मिनट मसाइब पढ़ के मजलिस ख़त्म कर रहा, मजलिस के बाद आप लोग इसी तरह बैठे रहना, इसलिए कि अज़ादारा ने करबला की तरफ से ड्रॉ है, और ड्रॉ होगा, एक टिकट होगा ज्यारत के लिए, जो ईरान इराक के लिए, जो भी लकी होगा उसको मिलेगा, और कुछ ऐलानात करूँगा। आप एक बाबा से बुलंद सलवार पढ़ लो, बस दोस्तों। माशाल्लाह पूरा गुलिस्तान भरा हुआ, हर तरफ मोमिनीन बैठे हुए। मौला तुमको आबाद रखे, मौला गुलिस्तान की जो मैनेजमेंट जो मजलिसें करती है, अल्लाह उनको भी आबाद रखे, कि इतनी अच्छी आज़ादारी आपको करके दे रही, बड़ी बरकत है इसकी। आज नवी मजलिस है, हर साल इस मजलिस में एक ऐसे शहीद का जिक्र होता जो सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज था। जमाने के इमाम से पूछा गया था कि मौला ये बताइए कि किस शहीद का जिक्र करना। इमाम ने कहा मेरे जद का जिक्र 24 घंटे करो, 24/7 मेरे जद पे मातम करो, लेकिन दो शहीदों का जिक्र जरूर करना। एक वो कि जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका, यानी रबाब का वो बेटा जिसको हर इमाम ने याद किया। दोस्तों तकल्लुफ से रोने का दिन नहीं, आज 20वां भी 10वां भी था मेरा मेरा, एक रिवायत से हुसैन की बच्ची की शहादत का दिन भी था। उसके बाद इमाम ने कहा कि उस शहीद का जिक्र ज़रूर करो जो मेरी दादी जैनब के पर्दे का मुहाफिज था। सिर्फ बीबी जैनब के पर्दे का मुहाफिज नहीं, बल्कि सैदानियों के दिल की धड़कन थे, सैदानियों के दिल की ढारस थे अब्बास। अली के ख्वाबों की ताबीर बनकर दुनिया में आए, मदीने से करबला तक जब भी बहादुर का दिल जोश शुजात से लबरेज हुआ, और दिल में जज्बे बहादुरी ने करवट ली, तो हुसैन ने खामोश कर। अब्बास उस शहीद का नाम है। मुझसे ख्वाहिश की गई कि मीर अनीस के मरसिए के मैं वो बन सुनाऊं, इसलिए कि अब्बास को फातिमा ने अपना बेटा कहा, बीबी ने ऐसे किसी को नहीं कहा। फातिमा अगर किसी को कहे कि ये मेरा लाल है तो उसका क्या मकाम होगा। दोस्तों जब 28 रजब को ये काफिला चला और बीबी जैनब ने ये कहा कि माँ जाए मुझे माँ की लहत पे और नाना की लहत पर लेकर चलो, तो सैदानियों को लेकर हुसैन 18 भाइयों के साथ आखिरी मरतबा जैनब बाहर आई। उसके बाद फिर जैनब अपने भाइयों के साथ कभी नज़र नहीं आई। पूरे भाइयों ने घेर लिया अपनी बहनों को, मौला अब्बास नंगी तलवार लेकर आगे चल रहे थे कि खबरदार किसी की निगाह ना पड़े कि अली की बेटी बाहर आई है। दोनों बहनों को लेके मज़ार रसूल पर आए, जैनब ने रुखसारे को रख के कहा नाना आपकी नवासी आई है नाना। हुसैन ने माथे को रख के कहा नाना आपका हुसैन आया है खुदा हाफिज बोलने। वहाँ से माँ की लहत पे गए, आहिस्ता मत सुनो, आहिस्ता मत सुनो। माँ की लहत पे जाके जैनब ने अपने माथे को रख दिया, कहा अम्मा खुदा हाफिज बोलने आई हूँ। हुसैन ने कहा अम्मा मैं वादागाह को जा रहा, जब भी मैं आपको पुकारूँ मेरी मदद को ज़रूर आना। जब हुसैन तड़प के माँ की लहत से लिपट के रो रहे थे तो बीवी की खबर मुबारक से एक आवाज़ आई जिसकी ख्वाहिश की गई, इसीलिए मैं पढ़ रहा। बीवी की आवाज़ आई जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में कहा कि जैसे ही हुसैन ने कहा कि अम्मा खुदा हाफिज, तो खबर फातिमा से आवाज़ आई कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है कि जा। तकल्लुफ से मत रो, तकल्लुफ से मत रो। हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गोहे पव मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर के अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, अपने बराबर के बराबर के बराबर के प्यार करती हूँ, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार। फिर फातिमा कहती है कि कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले में। अरे कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। ये फातिमा की आवाज़ थी जिसे करबला में अब्बास के किरदार को पेश किया। अब्बास उस शहीद का नाम दोस्तों कि जब तक अब्बास मौजूद थे किसी की मजाल नहीं थी, सारी बीबियों के दिल को सुकून था, पूरी जिंदगी इताअत में गुजरी। बस एक लम्हे की तरफ शब आशूर इशारा करता कि शब आशूर मौला हुसैन के खेमे में अब्बास बैठे हुए थे कि शिमिर ने आके जालिम ने आके अब्बास को पुकारा। अब्बास जाने में तकल्लुफ कर रहे थे, हुसैन ने कहा भैया जाओ देखो वह क्या चाहता है। जब गए तो उसने कहा अब्बास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमान है। अब्बास का चेहरा सुर्ख हो गया, अमान नामे को लेके चाक चाक किया और जालिम के मुंह पे कहा तुझे शर्म नहीं आती, मेरे लिए अमान नामा लाया है और फातिमा के लाल के लिए कुछ नहीं है। सर को झुका के खेमे में आए, हुसैन को वाकया बताया। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, कहा कि भैया जाते तो बेहतर था, जाते जाते सैदानियों को लेके चले जाते, पूरी जिंदगी कभी जवाब नहीं दिया हुसैन को। ये लम्हा आ गया कि हुसैन ने कहा जाते जाते बीबियों को लेके जाते, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, खैमे का पर्दा हटाया, खैमे से बाहर निकले। हुसैन समझ गए, आगे बढ़ के शाने बेहाथ रखा, पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा नजफ जाऊंगा, जाके बाबा से कहूंगा बाबा जिसकी गुलामी में दिया था उसने आजाद कर दिया। हुसैन ने सीने से लगा लिया, ये है अब्बास, इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो, आज तुमको बीबी उम्मुल बनीन दुआ दे, आज तुमको बीबी फातिमा दुआ दे। उनका बेटे का जिक्र है, बस मैं 5 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा, आखिरी मजलिस कल होगी, मौला हुसैन के ऊपर पढ़ूंगा। बस दोस्तों दिन गुजरा, एक एक शहीद होता गया, कासिम का लाशा पामाल हो गया, और मोहम्मद की मैयतें आई। अब्बास ने आके कहा मौला मेरा सीना तंगी कर रहा, मौला मुझे इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो, तो रोते हुए कहा आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार हूँ। अब्बास खेमे में गए, सकीना को गोद में उठाया और लेकर हुसैन के खेमे की तरफ चले। हुसैन ने दूर से ये मंजर देखा कि सकीना को सिफारिश के लिए ला रहे, तो दोस्तों हुसैन ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, सकीना से कहा बेटी आज चचा की सिफारिश कर रही हो, कल तमाचे लगेंगे, चचा बहुत याद आएंगे, कानों से गोशवारे छीनेंगे तो चचा याद आएंगे। और ये ऐसा ही हुआ, पहला तमाचा सकीना को पड़ा तो नहर की तरफ देख कर कहा चचा मेरे रुखसार नीले हो गए। मौलाबाद रखे, मौलाबाद रखे, बीबी तुम्हारे फुरसे को कबूल करे, बीबी फुरसे को कबूल करे। हुसैन ने इजाजत दी, अब्बास खेमे में आए, सैदानियों को सलाम किया, खुदा हाफिज कहा, हर बीबी की दिल की ढारस का नाम अब्बास है। उसके बाद सर को झुका के सैदानी के खेमे में चले गए। आप समझ गए कि कहाँ गए अब्बास, उस बीबी के खेमे में गए जिसको माँ की तरह जिसका एहतराम करते थे, माँ की तरह सर को जिसके सामने कभी सर उठा के बात नहीं करते, हमेशा इस तरह सर झुका के बात करते। जाके बीबी जैनब के सामने सर को झुका के बैठ गए, माँ की तरह पाला है जैनब ने अब्बास को, माँ की तरह पाला, बचपने से पाला है। बस सर को झुका के बैठ गए, जैनब ने पूछा भैया क्या चाहते हो, तो एक ही जुमला कहा
कि मुझे इजाजत दीजिए, परमिशन दीजिए कि मैं मैदान में जाऊं। बस ये सुनना था, अली की बेटी के चेहरे का रंग बदल गया। कभी अब्बास के चेहरे को गौर से देखा, फिर कभी अपने बाजुओं को देखा। अब्बास ने कहा, बीबी मैं इजाज़त लेने आया। कहा, मेरे भाई जा रहे हो, खुदा हाफिज, लेकिन एक बात सुनते हुए जाओ। उन 20 रमज़ान की रात थी, मेरा बाबा मेरे बाजुओं के बोसे ले रहा था। मैंने पूछा था, बाबा क्यों ले रहे? तो कहा था, बेटी तुम्हारे बाजुओं में रसन बांधी जाएगी, तुम्हारे सर से चादर छीनी जाएगी। अब जैनब का जुमला सुनो। उसके बाद बीबी ने कहा, अब्बास मुझे बाबा की बात पे यकीन था ये होगा, लेकिन कभी सोचा करती थी कि जिसके 18 भाई हो और अब्बास जैसा भाई, अरे किसकी मजाल है अब्बास। वो दिन आ गया। बस दोस्तों, अब्बास का चेहरा सुर्ख हो गया कि हाय मेरे बाद जैनब के बाजुओं में रसन बांधी जाएगी। पर्दे को हटाया, फौज पे निगाह डाली, कहा आके एक एक का बदला लूंगा। हुसैन के करीब गए, हुसैन ने कुछ नहीं कहा, शाने पे हाथ रख के कहा कि अब्बास तलवार नहीं चलाना। इसी तरह पुरसा दो, बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। बस मजलिस खत्म हो गई। मैदान में आए, नज़े पे मश्के सकीना को बांधा, नहर में छोड़ी, पानी लेके जब वापस आ रहे थे, ठंडी हवाएं चलने लगी। अब्बास के कलेजे में तीर चलने लगे कि हाय या ठंडी हवा है और हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अली असगर झूले में, सकीना प्यासी है, पानी को लेके जब वापस आ रहे थे, दोस्तों एक के बाद दूसरा शाना खता हो गया। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। पहले सीधा शाना खता हुआ, फिर दूसरा शाना खता हुआ। अब गाजी की एक ही ख्वाहिश थी कि पानी खैमे तक पहुंचे। बस दोस्तों, पानी लेके आगे बढ़ रहे थे, हुरमुला का तीर चला, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। बस मैं मजलिस ख़त्म कर दी। मैंने अजीजों, इतने जख्मी होने लगे, कोई नज़दीक से तलवार मारता था, कोई नैजा मारता था, कोई तीर मारता था। अब्बास घोड़े पे झूम रहे थे, एक लईन ने ऐसा गुर्ज मारा सर के ऊपर कि अली का लाल घोड़े से जब जमीन पे आ रहा था तो कहा, आखा मेरा आखिरी सलाम। अजीजों ये वो लम्हा है कि बस मैंने मजलिस ख़त्म कर दी कि फातिमा ने एक जाकिर हुसैन से कहा जो मौला अब्बास के हरम में जिक्र करता था। पर्दे में आके फातिमा ने कहा था कि ऐ जाकिर, तू मेरे बच्चे की मुसीबत को बयान नहीं करता। उसने हाथों को जोड़ के बीवी से कहा कि मैं बयान करता कि हाथ काटे गए, सर पे गुर्ज आया। फातिमा ने एक ही जुमला कहा, तू मेरी बच्चे की असल मुसीबत। तो जाकिर ने कहा, बीबी अब आप इरशाद फरमाएं। तो बीबी ने कहा, जाकिर आशूरे का दिन हर शहीद जब घोड़े से जमीन पे आता था उसके हाथ होते थे, हाथों के सहारे नीचे आता। मेरा अब्बास सर के बल घोड़े से जमीन पर आया। हुसैन पहुंचे और कहा, भैया खुदा हाफिज।